पृष्ठ संख्या 88। आज की प्रचलित काल लेखन पद्धतियाँ। ताल लेखन और काल लेखन की पद्धतियों का जायजा लेने के बाद अब हम हिंदुस्तानी संगीत की आज की दो प्रचलित पद्धतियों का अध्ययन करें। शास्त्रीय पद्धतियों से काल लेखन करने के लिए पंडित भातखंडे एवं पंडित पलुष्कर दोनों के काल लेखन विषयक विचार और उसमें उनके द्वारा किए गए अमूल्य योगदान के प्रति संगीत के प्रत्येक विद्यार्थी को सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। पंडित भातखंडे ने अलग अलग उस्तादों एवं पंडितों से हजारों रचनाएं प्राप्त करके उनके राग स्वरूप एवं बंदिशों का अध्ययन किया और उन्हें कागज पर उतार दिया। ऐसा करते समय उन्होंने उन रचनाओं के लय स्वरात्मक स्वरूप को सरगम और काल चिन्ह की मदद से आधिकाधिक शास्त्रीय पद्धति से कागज पर अंकित किया। नोटेशन द्वारा तैयार की गई उन रचनाओं की प्रतिकृतियों का विद्वानों, कलाकारों एवं सामान्य गायकों को अच्छा उपयोग होने लगा और प्रत्यक्ष गुरु के बिना उन रचनाओं को गायक संतोषजनक रूप में गाने लगे। नोटेशन और प्रत्यक्ष गायन में निश्चित ही फर्क है। पृष्ठ संख्या 89। और नोटेशन सिस्टम गायन की प्रतिकृति नहीं हो सकती, यह तथ्य सर्वमान्य हो तो भी हमें इस सत्य को खुले दिल से स्वीकारना चाहिए कि नोटेशन के कारण रचना को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। माँ की मौत के बाद अगर बालक की मौसी ने बड़े प्यार से उसकी परवरिश की हो तो केवल वह माता द्वारा किए गए पालन पोषण की बराबरी नहीं कर सकती। इस वजह से उस मौसी की परवरिश को दुत्कारना बिल्कुल गलत होगा। नोटेशन पद्धति का उद्देश्य एवं उस उपयोग मौसी के द्वारा की गई परवरिश जैसा है। अब हम भातखंडे पद्धति के नोटेशन के विषय में अध्ययन करें। पंडित भातखंडे पद्धति। पहला, पहली मात्रा दर्शाने के लिए निश्चित किया गया चिन्ह एक्स का है। दूसरा, काल दर्शाने वाली मात्रा का चिन्ह जीरो है। तीसरा, ताल के प्रत्येक खंड की समाप्ति पर तदर्थ चिन्ह खड़ी पाई है। एक मात्रा में जितने अक्षर अंतर्भूत हों वे सब एक ही मात्रा में समाविष्ट होने का सूचक चिन्ह अर्धचंद्र नीचे से है। पांचवा, अक्षरहीन मात्रा काल दर्शाने वाले चिन्ह को अवग्रह एस से दर्शाया जाता है। अब हम भातखंडे पद्धति में लिखा हुआ ताल झूमरा देखेंगे। धिन अद्धा तिरिकिट धिन धिन धागे तिरिकिट तिन अत्ता तिरिकिट धिन धिन धागे तिरिकिट। इसी पद्धति से एक पूरब शैली की गत के लिए देखिए पृष्ठ संख्या 2A। यहाँ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि रचनाकार ने यदि एक मात्रा में एक ही अक्षर रखा हो तो उसे स्वतंत्र रखा जाता है। उसका मात्रा काल एक है यह दर्शाने के लिए उस अक्षर के नीचे अर्धचंद्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ताल की ताली क्रिया जिस अक्षर पर आती है उस अक्षर के नीचे उस ताली की क्रम संख्या लिखी जाती है। भातखंडे पद्धति में संगीत की रचना लिखना लेखक एवं पाठक दोनों के लिए अत्यंत सुविधाजनक है, किंतु इस पद्धति में कुछ रचनाओं का संपूर्णतः आकलन नहीं हो सकता। यहाँ हम विविध खंडों की जातियों का शब्द प्रयोगों का विचार करें तो यह प्रश्न हमें ठीक तरह से ज्ञात हो जाएगा। धात्रक धात्रक इन दोनों शब्दों में से एक तिस्र और दूसरा चतस्र जाति का है। पृष्ठ संख्या 90। इसलिए पाठक अगर पूर्णतः ज्ञानी हो तभी इन भेदों का फर्क समझकर वह उक्त नोटेशन लिपि का लाभ उठा सकेगा। तबले के जो विविध शब्द हैं और जो हमारे बजाने में आते हैं उनकी रचना पांच में से किसी एक जाति में हुई होती है। इसलिए प्रत्येक मात्रा में आए हुए शब्द किस जाति के हैं सो दर्शाने वाला चिन्ह भातखंडे पद्धति में नहीं है। पंडित पलुस्कर पद्धति। पंडित पलुस्कर की काल लेखन पद्धति अधिक शास्त्रीय है। हर रचना के प्रत्येक अक्षर का मात्रा काल कितना है सो चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। पंडित पलुस्कर पद्धति में निम्नांकित चिन्हों का इस्तेमाल विविध मात्रा काल दर्शाने के लिए किया जाता है। मात्रा संख्या एवं चिन्ह। एक मात्रा संख्या जिसका चिन्ह परिपाई या माइनस का चिन्ह। 1/2 मात्रा संख्या का चिन्ह शून्य। 1/4 मात्रा संख्या का चिन्ह नीचे से अर्धचंद्र। 1/3 मात्रा संख्या का चिन्ह क्षैतिज एस। 1/6 मात्रा संख्या का चिन्ह 2 क्षैतिज एस। 1/8 मात्रा संख्या का चिन्ह 2 चंद्र। 2 मात्रा संख्या का चिन्ह एस। सम दिखाने के लिए उसके नीचे एक संख्या दर्शाई जाती है और तत्पश्चात आने वाली प्रत्येक ताली के नीचे वह ताली कौन सी मात्रा पर है वह मात्रा संख्या लिखी जाती है तथा काल दर्शाने वाली मात्रा को प्लस चिन्ह से दर्शाया जाता है। एकाध अक्षर का विराम काल दीर्घ हो तो उसे एस चिन्ह से दर्शाया जाता है। उक्त काल जितना उसके पूर्व उच्चारित अक्षर का स्वर काल लंबाया गया है। ताली अथवा खाली दर्शाने वाली संख्या या चिन्ह नए खंड का आरंभ दर्शाता है। इसीलिए भातखंडे पद्धति की तरह खंड दर्शाने वाली खड़ी रेखाएं इस ताल लेखन पद्धति में नहीं है। अगर एकाध मात्रा के बाद स्वर विस्तार न हो किंतु केवल विराम हो तो उसे दर्शाने के लिए एक खड़ी रेखा लिखी जाती है। पृष्ठ संख्या 91। पलुस्कर पद्धति एवं भातखंडे पद्धति की तुलना। पंडित पलुस्कर पद्धति शास्त्रीय पद्धति है किंतु उस पद्धति के जरिए अध्ययन करने के लिए अथवा रचना का शीघ्र पठन करने के लिए यह पद्धति बहुत ही क्लिष्ट है। एक पंचमांश, एक सप्तमांश, एक नवमांश मात्रा काल को दर्शाने के लिए कोई भी चिन्ह इस पद्धति में निर्धारित नहीं है। अर्थात इस पद्धति से अध्ययन करना हो तो सर्वानुमति से नए चिन्ह निर्धारित किए जा सकते हैं, किंतु इस पद्धति के कारण यद्यपि रचना का लेखन शास्त्रीय पद्धति से किया जा सकता है तो भी उसका वाचन करना अत्यंत दुष्कर होता है। इसलिए पलुस्कर पद्धति विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। कदाचित इसी कारण यह पद्धति लोकप्रिय नहीं हुई होगी, अर्थात विद्यार्थी एकाध रचना का सही विश्लेषण कर सका या नहीं यह जान लेने के लिए उसे अगर वह रचना पलुस्कर पद्धति में लिखने के लिए कहा जाए तो उक्त विद्यार्थी की विश्लेषण क्षमता की परख हो सकती है। अर्थात इस गुण परख के लिए चुनी हुई रचना दो जातियों और अनेक गुणितों में बद्ध होने की आवश्यकता है। पंडित भातखंडे पद्धति में रचना का लेखन वाचन करना अधिक सुलभ है, इसीलिए यह पद्धति अधिक लोकप्रिय हुई। परंतु इस पद्धति में भी कई त्रुटियां हैं, जैसे एक मात्रा में जितने अक्षर अंतर्भूत होंगे उन सबको एक मात्रा चिन्ह के नीचे दर्शाया जाता है। अगर उन अक्षरों में ही कहीं विराम छिपा रहा हो तो उसका आकलन करके रचना का वाचन करना मुश्किल होता है। अर्थात पलुस्कर पद्धति की अपेक्षा उस रचना का वाचन भातखंडे पद्धति से निश्चय ही आसान रहता है। किंतु इन दोनों पद्धतियों में शब्द या जोड़ शब्द अभंग रहें या रहने चाहिए, यह उद्देश्य निहित नहीं होता। रचना केवल मात्रा के आकार को ध्यान में रखकर बांधी नहीं होती, बल्कि उसे विविध शब्द जोड़ शब्दों अंत्य पद शब्दों जैसे भाषा साहित्य के जरिए निर्माण किया होता है। फलतः उपर्युक्त दोनों पद्धतियों में अगर रचना लिखी जाए तो कई बार शब्द विच्छेद करा के वह रचना आशयहीन रूप में लिखी जाती है और इसीलिए वह उसी रूप में पढ़ी जाती है तथा प्रस्तुत भी की जाती है और वैसे ही उसका विस्तार भी किया जाता है। सच बात तो यह है कि बिना शब्द को तोड़े उक्त रचना का आशय अबाधित रहे, इसकी खबरदारी पंडित पलुस्कर या पंडित भातखंडे दोनों पद्धतियां नहीं ले सकती। इसलिए एक सुधारित काल लेखन पद्धति का निर्माण होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में कुछ विचार आगे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 92। पंडित भातखंडे और पंडित पलुस्कर की काल लेखन पद्धति की त्रुटियों का पहले हम अनुभव लें। पहला, पंडित भातखंडे पद्धति में लिखे गए मिश्र जाति में रचित एक कायदे को हम अध्ययन के लिए लें। धागे न धा तिरकिट तक, धागे न धित धित, धागे न धाधा तिरकिट, धागे न धीना गिन। उपर्युक्त कायदे को भातखंडे पद्धति से चार मात्रा काल में लिखना हो तो उसे इस प्रकार लिखना होगा, धागे न धा तिरकिट तक, धागे न धीट धीट, धागे न धा तिरकिट, धागे न धीना गीना। इस कायदे को यहाँ चार मात्राओं में प्रस्तुत किया गया है, किंतु यही कायदा अगर आठ मात्राओं में प्रस्तुत करना हो तो उसे इस प्रकार लिखना होगा, धागे न धा तिरकिट तक, धागे न धीट धीट, धागे न धाधा तिरकिट, धागे न धीना गीना। इस कायदे को यहाँ चार मात्राओं में प्रस्तुत किया गया है, किंतु यही कायदा अगर आठ मात्राओं में प्रस्तुत करना हो तो उसे इस प्रकार लिखना होगा, धागे न धा अतिरिकिट तक, धागे न धी अट धीट, धागे न धा अधा तिरकिट, धागे न धी अना गीना। भातखंडे पद्धति में दोनों प्रकारों से रची गई उपर्युक्त रचना जानकार वाचक ही पढ़ सकेगा। यहाँ जानकार शब्द जिसे इस रचना की जानकारी है इस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है, जिसे इस रचना की जानकारी नहीं है वह इसे मिश्र जाति के वजन से अचूकता के साथ पढ़ने की संभावना बहुत ही कम है। बी, अब इसी रचना को हम पंडित पलुस्कर पद्धति में फिर से लिखकर उसका वाचन करने का प्रयत्न करें। पंडित पलुस्कर पद्धति में 1/7, 1/5, 1/9, 1/14 या 1/10 आदि मात्रा काल के लिए कोई भी चिन्ह निर्धारित नहीं किया गया है, किंतु उन विविध मात्रा कालों के लिए नए चिन्ह हम निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ वह रचना लिखते समय प्रत्येक अक्षर के मात्रा काल का उक्त अक्षर के नीचे संकेत दिया गया है। ऊपर लिखे हुए कायदे में दिए गए 1/7 या 1/14 मात्रा काल को पढ़कर उसे मुख से व्यक्त करने के लिए सूक्ष्म लय के गहरे अभ्यास की जरूरत है। अतः सामान्य अभ्यास के लिए इस रचना को मिश्र जाति में पढ़ना लगभग असंभव है। पृष्ठ संख्या 93। उन दोनों रचनाओं के माध्यम से ही हम उन दो पद्धतियों से विद्यमान त्रुटियों की कल्पना कर सकते हैं। सुधारित काल लेखन की आवश्यकता। अगर हम तबला पखावज की विविध रचनाओं का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि वे रचनाएं विशेष सूत्रों में बधी गई हैं। वे सूत्र इस प्रकार हैं। पहला, ये रचनाएं चतरस्र, तिस्र, मिश्र, खंड एवं संकीर्ण इन 5 जातियों में बधी हुई होती हैं। दूसरा, कुछ रचनाएं संपूर्णतः एक जाति में बधी हुई होती हैं, तो कुछ रचनाओं में एक से अधिक जातियों का उपयोग किया पाया जाता है। तीसरा, बहुसंख्य रचनाओं में शब्द चुनी हुई उक्त जाति की 1 गुण, 1.5 गुण, 2 गुण या 4 गुण इत्यादि में आयोजित होते हैं। उपर्युक्त 3 सूत्रों का एकत्रित रूप में विचार करने पर हमें ज्ञात होता है कि किसी भी रचना के प्रस्तुतिकरण में एक या अनेक जातियों की योजना की गई होती है। ऐसा होते हुए भी पंडित भातखंडे या पंडित पलुस्कर की काल लेखन पद्धति में जाति दर्शक या गुणित दर्शक कोई भी चिन्ह निर्माण नहीं किया गया है। अगर वैसा चिन्ह होता तो उस रचना को पढ़ते समय विविध शब्दों की जातियों एवं गुणितों का अंदाजा बांधकर उस रचना का वाचन सुलभ होता। सी, तबला पखावज की रचनाओं का विश्लेषण करते समय एक बात ध्यान में आ जाती है कि वह रचना केवल अक्षरों से नहीं बल्कि शब्द समूहों से बंधी हुई होती है। ऐसी रचना काल लेखन पद्धति से लिखते समय उन शब्दों या शब्द समूहों को तोड़कर लिखा जाए तो उस रचना की आत्मा नष्ट होती है। भातखंडे पद्धति में एक शब्द अगर 2 मात्राओं में फैल गया हो तो वह शब्द मात्रा के हिसाब से तोड़ा जाता है। पंडित पलुस्कर पद्धति में योजित चिन्ह मात्रा काल दर्शाने वाले होते हैं। रचना में आया हुआ प्रत्येक अक्षर मात्रा के कितने हिस्सों में व्याप्त है सो पलुस्कर पद्धति में ज्ञात होता है। फलतः उक्त रचना का प्राणहीन नक्शा ही प्रायः पलुस्कर पद्धति में पढ़ने से अनुभूत होता है। उदाहरण के लिए, तकित तकित तक धिन धातक घेतक धिन घेड़नक धिन घेड़नक धिन गिन। भातखंडे पद्धति में 16 मात्राओं वाली यह रचना यूं लिखी जाएगी, तकि त त कीट तक धीन धात क घे तक धीन घीड़ नग धीन घीड़ नग धीन गिन। पृष्ठ संख्या 94। इस विचार को अधिक स्पष्ट करने के लिए अब हम एक और रचना का अध्ययन कर लेंगे। धाति धागे न धातिरिकित धाति धागे तीना कीना। यह रचना पंडित पलुस्कर ताल लिपि पद्धति में यूं लिखी जाएगी, धाति धागे न धा तिरिकिट धाति धागे तीना कीना। पंडित भातखंडे ताल लिपि पद्धति, धाति धागे न धा तिरिकिट धाति धागे तीना कीना। अब इस रचना में धागे न और धातिरिकिट ये 2 अर्थ पूर्ण स्वतंत्र शब्द हैं। इन्हें अगर तोड़कर लिखना पड़े तो रस हानि होती है। ये शब्द पंडित पलुस्कर एवं पंडित भातखंडे की काल लिपि पद्धतियों में तोड़कर लिखने पड़ते हैं। फलतः उनका वाचन करने वाले विद्यार्थी पशुपेश में पड़ जाते हैं। काल लेखन पद्धति साधन है, साध्य नहीं। रचना अच्छी तरह पढ़ी जा सके इसलिए काल लेखन पद्धति निर्माण हुई, किंतु काल लेखन पद्धति के कारण रचना में अंतर्भूत शब्दों का अगर निरर्थक शब्द विभाजन होता हो तो संगीत के लिए वह हानिकारक होगा। उक्त रचना में धागे न और धा तिरकिट शब्द अखंडित रूप में प्रस्तुत होते रहे तो वह कायदा कर्ण मधुर सुंदर एवं अर्थवाही रचना के रूप में आनंद प्रदान करता है। धाति धागे न अथवा धागे न धाति रिकिट, धागे धागे न धाति धाति रिकिट या धाति रिकिट धाति धागे न, ऐसे स्वरूप के पूर्ण शब्दों की सहायता से खानदानी परंपरा से यह कायदा का विस्तार प्रस्तुत किया जाता है और वैसा ही वह प्रस्तुत किया जाए यह अपेक्षा होती है। इसके बदले भातखंडे पद्धति से अभ्यास करने पर इस कायदे का विस्तार धाति धागे नधा तिरिकिट नधा तिरिकिट नधा तिरिकिट इस पद्धति से होने की आशंका अधिक है और कई लोग वैसा ही करते भी हैं। इस प्रकार का विस्तार बहुतांश में निरर्थक हो सकता है और उसे घरानेदार सौंदर्य दृष्टि में कलाहीन पलटे के रूप में गिना जाता है। संक्षेप में जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं उन दोनों पद्धतियों में परिणाम कारकता की दृष्टि से तीन महत्वपूर्ण त्रुटियां महसूस होती हैं जिनके कारण उक्त रचना का वाचन ठीक ढंग से नहीं होता या उसे उचित ढंग से पढ़ना मुश्किल होता है। वे त्रुटियां इस प्रकार हैं। रचना में योजित जातियों की हमें उचित चिन्हों द्वारा सूचना प्राप्त नहीं होती। दूसरा, गति या गुणित को अगर रचना में बदल दिया जाए तो उस बदल की सूचना भी हमें किसी भी चिन्ह के जरिए नहीं मिलती। तीसरा, लिपि के नियम के अनुसार लिखते समय उसमें योजित सार्थक शब्दों की तोड़ फोड़ होती है। पृष्ठ संख्या 95। उपर्युक्त तीनों त्रुटियों का निवारण करके हम इसे सुधारित भातखंडे पद्धति के तौर पर प्रचलित कर सकते हैं। इस सुधारित पद्धति से लेखन किया जाए तो उस पद्धति से किया गया वाचन विद्यार्थी के लिए फायदेमंद और आसान होगा। इसके लिए सुधारित नियम इस प्रकार हैं। अ, रचना की गढ़न जिस जाति में की गई हो उस जाति को दर्शाने वाले अक्षर रचना के पहले अक्षर के सिर पर लिखा जाए। उसके लिए जाति दर्शक निम्नांकित अक्षरों का उपयोग किया जाए, जैसे चतुरस्र के लिए सी, तीसर के लिए टी, खंड के लिए के, मिश्र के लिए एम, संकीर्ण के लिए एन। रचना में जिन अक्षरों से लय का गुणित होता है किंतु जाति नहीं बदलती, वहां वह गुणित दर्शाने वाली संख्या जिस अक्षर से लय बदलती है उस अक्षर से सिर पर लिखी जाए। उदाहरण के लिए धात्रक धिकिट धात्रक धिकिट, तो धा के ऊपर टी लिखा जाए। और कत गदिगन कत गदिगन धात्रक धिकिट कत गदिगन, क के ऊपर टी टू लिखा जाए। रचना में आए हुए अर्थवादी शब्दों को तोड़े बिना लिखना भातखंडे पद्धति के अनुसार एक मात्रा में आने वाले शब्द या अक्षर दर्शाने वाले अर्धचंद्र के चिन्ह को उक्त अक्षरों के नीचे अंकित करना। उदाहरण के लिए उपर्युक्त बी विभाग में बताई गई चतुरस्र जाति की रचना इस प्रकार लिखी जाए। तकिट तकिट तक धिन धातक घेतक धिन घेड़नग धिन घेड़नग धिन गिन। पृष्ठ संख्या 96। सम की मात्रा को सम चिन्ह से दर्शाया जाए, खाली क्रिया को शून्य चिन्ह से दर्शाया जाए, तालावर्तन को सम के अतिरिक्त अन्य तालियां जिन मात्रा संख्याओं पर आती हैं वे संख्याएं उक्त तालियों के अनुसार लिखी जाएं। पलुस्कर पद्धति के अनुसार तिरकिट जैसे लघु उच्चारण के शब्द ह्रस्व लिखे जाएं। तिरकिट न लिखकर तिरकिट लिखा जाए। इन सुधारित नियमों का अवलंब करके पूरब बाज की लोकप्रिय त्रिपल्ली कैसे लिखी जाए सो नीचे दर्शाया गया है। निकास दर्शक लेखन तबला पखावज की रचना काल की दृष्टि से कैसे लिखी जाती है सो हमने देखा। उक्त लेखन पद्धति की त्रुटियां भी हमने देखी और उक्त त्रुटियों को हटाकर सुधारित लेखन पद्धति कैसी हो इस संबंध में भी विचार किया, किंतु तबले पर की रचना मात्रांशों में यथोचित रूप में लिखना, उसी रूप में उसे पढ़ सकना जितना महत्वपूर्ण है, उक्त रचना को उचित निकासों द्वारा बजा सकना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचना की परिणाम कारकता सर्वाधिक रूप में निकास पर निर्भर होती है, इसीलिए निकास को महत्वपूर्ण माना जाता है। नाजुक प्रकृति की रचना को दिल्ली अंग से किनार के इस्तेमाल के साथ तबले पर दो उंगलियों के जरिए बजाने से वह प्रभावी हो जाती है। गूंज युक्त ता या ना अक्षर को चाट, लव और स्याही पर भी निकाला जा सकता है। पूरब की खुले निकास वाली रचनाओं में कभी कभी यह नाद पंजे से निकाली हुई थाप के जरिए बजाया जाता है। तिट या तिरकिट को दो उंगलियों या कभी कभी तीन उंगलियों से बजाया जाता है। धीना गीना के अंतिम अक्षर ना को तर्जनी से किनार पर बजाया जाता है, किंतु कभी कभी वही अक्षर मध्यमा या अनामिका और कनिष्ठा के संयुक्त आघात से बंद रूप में भी बजाया जाता है। पृष्ठ संख्या 97। तबले पर जिस प्रकार विविध पद्धतियों से एक ही अक्षर अलग अलग तरीके से बजाए जाते हैं, उसी प्रकार बाएं पर भी घे, घे घे या गे गे विविध पद्धतियों से बजाए जाते हैं। यही नहीं तो बंद अक्षर की बजाने की भी अलग अलग पद्धतियां हैं। रचना का निकास कैसा है और कैसा होना चाहिए यह बताने का असली अधिकार रचनाकार का होता है। तबला वादक भी उस रचना को रचनाकार की कल्पना के अनुरूप ही बजाने का प्रयत्न करता है, किंतु कभी कभी तबला वादक अपने संस्कारानुसार उस रचना के निकास में परिवर्तन करके उसे प्रस्तुत किया करता है। नवसीखुए छात्र को अथवा उस रचना से नवपरिचित वादक को भी उक्त रचना के योग्य निकास की प्रायः कल्पना नहीं होती और वह उस रचना को जैसी उसकी समझ में आई हो और उसका हाथ का जैसा रखाव हो तदनुसार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। निकास विषयक योग्य मार्गदर्शन के अभाव में इस प्रकार प्रस्तुत की गई रचना उचित परिणाम को साध्य नहीं कर सकती। ऐसा न हो पाए और रचनाकार या समर्थ ज्येष्ठ या ज्ञानी तबला वादक के लिए अभिप्रेत निकासानुसार रचना का प्रस्तुतिकरण परिणाम कारकता के साथ किया जा सके, इसलिए निकास सहायक चिन्हों के जरिए लेखन कैसे किया जाए इसका विचार करके पंडित नारायण जोशी ने एक नई लेखन पद्धति निर्माण की है। अनुभव की बात यह है कि इस पद्धति से अभ्यास करके रचनाएं बजाई जाएं तो वे परिणाम कारक होती हैं। पंडित नारायण जोशी ने अपनी आदिताल पुस्तक में इस संबंध में ठीक मार्गदर्शन किया है। इन पद्धतियों का हम संक्षेप में परिचय प्राप्त कर लेंगे। ऊपर तबले पर के अक्षरों का निकास, अक्षर चिन्ह अक्षर कैसे निकाले जाएं इसका स्पष्टीकरण। ता या ना जिसका चिन्ह सा है, तबले की किनार पर तर्जनी से गूंज युक्त आघात दिल्ली शैली के द्वारा। ता या ना सा, सा के ऊपर चंद्रबिंदु जिसका चिन्ह है, तर्जनी से लव पर किया गया गूंज युक्त आघात पूरब शैली से। तू या ती जिसका चिन्ह है रे, तर्जनी को दाहिनी तरफ ऊपर उठाकर स्याही पर किया गया गूंज युक्त खुला आघात। ती तक ट जिसका चिन्ह है ब, मध्यमा से स्याही पर किया गया बंद आघात। र या ट जिसका चिन्ह है अ, स्याही पर तर्जनी से किया गया बंद आघात। ती तक या ट जिसका चिन्ह है क, स्याही पर मध्यमा या अनामिका से किया गया बंद आघात। तो या जिसका चिन्ह है ड, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा तीनों से मिलाकर स्याही पर किया गया बंद आघात। बाएं पर के अक्षरों का निकास, पृष्ठ संख्या 98। अक्षर है चिन्ह, अक्षर कैसे निकाले जाएं इसका स्पष्टीकरण। गे, घे या घी जिसका चिन्ह है एक, बाएं पर मध्यमा और अनामिका से युक्त। गे, घे या घी जिसका चिन्ह है दो, तर्जनी से किया गया घुमारे युक्त आघात। के या की जिसका चिन्ह है तीन, पंजे से किया गया बंद आघात। की या के जिसका चिन्ह है चार, मुट्ठी से किया गया बंद आघात। ऊपर निर्दिष्ट चिन्ह तबला और बाएं के लिए अलग अलग दर्शाए गए हैं, किंतु जब धा जैसा अक्षर दोनों हाथों से बजाना हो तब दोनों हाथों के चिन्ह उन अक्षरों के नीचे दर्शाना आवश्यक है। इस विषय को पूर्णतः समझ लेने के लिए पंडित नारायण जोशी जी का लिखा हुआ आदि ताल ग्रंथ का अध्ययन करना आवश्यक है। रचनाएं पलुस्कर पद्धति से कैसे लिखे और भातखंडे पद्धति से कैसे लिखें, सो इस अध्याय के परिशिष्ट एक और दो में दर्शाया गया है। सुधारित संयुक्त काल निकास लेखन पद्धति से उन्हें कैसे लिखा जाए इसे परिशिष्ट तीन और चार में दिखाया गया है। नोट, तबले के विद्यार्थी के लिए नोटेशन पद्धति का गहरा ज्ञान हो इस उद्देश्य से इस विषय का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। पदवी एवं पदव्युत्तर परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विश्लेषणात्मक ढंग से अध्ययन करना जरूरी है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे गृह पाठ के तौर पर अलग अलग पद्धतियों से भिन्न भिन्न रचनाएं लिखते जाएं। ऐसा करने से भले ही उसे प्रत्यक्ष वादन के लिए विशेष लाभ हो या न हो, किंतु इस पद्धति से रचना लिखने के अभ्यास से उन्हें रचना का विश्लेषण करने की आदत पड़ जाती है, जिसका लाभ उन्हें ज्ञान की सफलता के दृष्टि से प्राप्त होता है। रचना के खंड कितनी मात्राओं के हैं, उनमें अंतर्भूत अक्षर किस जाति के निदर्शक हैं, उनका मात्रा काल कितना होता है, यह सब जान लेने की आदत ही इस अभ्यास से विद्यार्थी को पड़ती है। पृष्ठ संख्या 99। इस आदत से नई नई रचनाओं का सहजतया आकलन उसे होने लगता है और धीरे धीरे उसका वादन पर प्रभाव पड़ना आरंभ हो जाता है। फलतः विद्यार्थियों को यह नहीं समझना चाहिए कि नोटेशन पद्धति मात्र परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए सरसरी तौर पर अध्ययन करने का विषय है। मेरी यह अपेक्षा नहीं है कि उपाय के तौर पर मेरी सुझाई हुई सुधारित लेखन पद्धति सर्वत्र अमल में आ ही जाएगी, किंतु मेरी यह तीव्र इच्छा है कि संगीत के विद्वज्जन उक्त पद्धति पर चर्चा करें तथा उस चर्चा मंथन से संगीत के सभी विद्यार्थियों के लिए एक नवीन सर्वमान्य सुधारित लेखन पद्धति निर्माण हो, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए उसकी अत्यंतिक आवश्यकता है।